क्यों, आप अपने आप भी चलें और हमें भी अपने कंधे पर बिठा कर चलें।
नहीं साहब, हम यह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हम मरे हुए हैं,
परावलंबी हैं, दूसरों पर आश्रित हैं,
दूसरों से अपेक्षा करने वाले हैं,
दूसरों से सहायता कराने वाले हैं।
जीवित आदमी अपनी समस्याओं का आप ही हल निकालता है और दूसरों को अपने कंधों पर बिठा कर ले चलता है,
वे जीवित आदमी हैं।
गायत्री का वास्तविक स्वरूप।
मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जीवन देने वाली जीवित गायत्री माता से ताल्लुक रखिए, मरी हुई से नहीं।
जीवंत गायत्री माता की शक्ल मैंने आपको बताई और यह बताया कि गायत्री का वास्तविक स्वरूप क्या है।
मैं समझता हूं कि यह स्वरूप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप गायत्री का वास्तविक लाभ उठाना चाहते हैं तो इससे कम में भी नहीं मिल सकता और इससे ज्यादा भी करने की कुछ आवश्यकता नहीं।
पहले आप गायत्री का वास्तविक स्वरूप समझिए और स्वरूप समझने के पश्चात ऐसी भक्ति करना शुरू करें जैसी अपेक्षित है।
अपेक्षित क्या है? बाजीगर अपना तमाशा तब दिखा पाता है जब कठपुतली अपने धागे को बाजीगर के हाथ में बांध देती है।
गायत्री माता भी आपको चमत्कार तब दिखा सकेंगी जब आप अपने जीवन के धागे को उनके हाथ में बांध देंगे, अर्थात उनकी प्रेरणा, उनकी शिक्षाएं, उनका मार्गदर्शन ग्रहण करने और स्वीकार करने के लिए आप तैयार हो जाइए।
भक्त उसी का नाम है जो सरेंडर करता है। भक्त उसका नाम है जो कहना मानता है। भक्त उसका नाम है जो पीछे पीछे चलता है। उसका नाम भक्त नहीं है जो आगे आगे चलता है और अपने भगवान को अपने पीछे चलाना चाहता है।
उसका नाम भी भक्त नहीं है, उसका नाम है बॉस।
आपका नाम है बॉस और हनुमान का नाम है भक्त।
नहीं महाराज जी, हनुमान तो देवता हैं और हम उनके भक्त हैं।
नहीं बेटे, आप भगत नहीं हैं,
हनुमान आपके भगत हैं और आप मालिक हैं,
आप उनके देवता हैं।
नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है?
बेटे, ऐसा ही है। आपने जो सलूक बना रखा है कि हनुमान को हमारी मर्जी पर चलना चाहिए और हमारा कहना मानना चाहिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए और हमारी आवश्यकताओं के लिए अपने पुण्य तक को छोड़ देना चाहिए,
इसका मतलब 100% यही है कि आप बॉस हैं और हनुमान हैं आपके वेटर।
वेटर कौन होता है?
वेटर उसे कहते हैं जो होटलों में चाय लाता रहता है।
ए वेटर, हाँ साहब।
क्या लाना है?
कॉफी लाओ।
अच्छा जी,
अभी लाया। ऑमलेट और ला, अभी लाया। जल्दी जल्दी लाने का उसे क्या मिलेगा?
आपने 1 रुपये का जो सामान खरीदा है उसमें से जो 20 पैसे बचे, जब बेराई बिल लावे तो उस 20 पैसे को उसे दे दीजिए।
यह क्या कहलाएगा?
यह कहलाएगा टिप।
तो आप हनुमान जी को क्या देना चाहते हैं?
टिप।
टिप में क्या देंगे?
लड्डू। चल धूर्त कहीं का, हनुमान जी को, हनुमान जी को लड्डू देना चाहता है। हनुमान जी को लड्डू खिलाएगा और उन्हें उल्लू बनाएगा। हाँ साहब, मैं तो लड्डू खिलाकर उल्लू बनाना चाहता था।
बेवकूफ कहीं का, देवताओं के साथ मखौल बंद कर, देवताओं को बदनाम करना बंद कर, देवताओं की इज्जत गिराना बंद कर।
अपनी इज्जत गिरा पर देवताओं की मत गिरा, देवताओं की इज्जत का ख्याल रख।
भक्ति न करना हो तो मत कर, पर देवताओं की इज्जत तो मत गिरा।
मित्रों,
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने चिंतन को दूसरे रूप में बदल देना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा?
गायत्री की प्रेरणाओं, गायत्री की शिक्षाओं का अनुकरण करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा।
अनुकरण और अनुसरण करने के लिए गायत्री के 24 अक्षर जो हैं, इन्हीं अक्षरों में सारी की सारी प्रेरणाओं एवं शिक्षाएं भर दी गई हैं। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?
भक्ति के लिए आपको अपने जीवन में किन सिद्धांतों का समावेश करना चाहिए?
गायत्री के अक्षरों में उनकी स्वयं की संरचना में ये सारी की सारी शिक्षाएं भरी हुई हैं। इनका आप अपने जीवन में अनुकरण करना चाहते हों तो आपको सिद्धियां मिल सकती हैं और आप गायत्री के असली भक्त बन सकते हैं।
गायत्री के असली भक्तों में से जिन जिन ने जो लाभ उठाए हैं उनका जिक्र मैंने पहले भी किया था, आज फिर से आपसे कहता हूं कि वह लाभ आपके लिए भी सुरक्षित हैं।
गायत्री की सिद्धियां सुरक्षित हैं, गायत्री के लाभ सुरक्षित हैं, गायत्री का अनुष्ठान सुरक्षित है।
कल जैसे मैंने आपको बताया था, वह आपके लिए सुरक्षित है। शर्त यही है कि गायत्री माता जो चाहती हैं, जो कहना चाहती हैं, उसको आप सुनें और समझें।
गायत्री मंत्र का निहितार्थ। मित्रों,
गायत्री माता क्या कहना चाहती हैं?
गायत्री के 24 अक्षरों की व्याख्या तो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि गायत्री के 24 अक्षरों में से एक एक अक्षर की व्याख्या करने के लिए 24 दिन चाहिए। इसमें मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक प्रत्येक समस्याओं का समाधान है।
गायत्री एक बीज मंत्र है जिसमें मनुष्य के मार्गदर्शन व उसके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है।
महाराज जी,
आप और क्या कहना चाहते थे?
बेटे, मैं यह कहना चाहता था कि गायत्री के जो अक्षर हैं
उनके इतने छोटे से अर्थों को समझ लें तो आपका भी काम चल सकता है।
चलिए गायत्री का सबसे स्थूल अर्थ, मोटे से मोटा अर्थ आपको मैं बताता हूँ। गायत्री का यह अर्थ है, गायत्री में एक ओम, तीन व्याहृतियां और छोटे छोटे नौ शब्द हैं।
नौ शब्दों में क्या है? चार शब्दों में भगवान के चार नाम हैं। भगवान के चार नाम ही ऐसे हैं जिनको हम अपने जीवन में धारण कर ले तो पर्याप्त है। क्या क्या है जरा बताइए।
अच्छा लीजिए, गायत्री का संक्षिप्त अर्थ बताता हूँ। मित्रों, लंबे अर्थ जानना हो तो गायत्री मंत्रार्थ नाम की हमारी पुस्तक पढ़िए, लेकिन अभी तो मैं आपको गायत्री का संक्षिप्त अर्थ बताता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ है, हे भगवान
आप सब में समाये हुए हैं। ईश्वर सब में समाया हुआ है। सब में समाया हुआ है तो हम क्या करें? बेटे, आपका काम यह है कि उसके बारे में आस्तिकता के जो सिद्धांत हैं उनको आप स्वीकार कर लें। क्या स्वीकार कर लें? दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां छिप करके आप बुरा काम कर सकते हैं। छिपकर बुरा काम करने के लिए कोई जगह नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः, मैं ओम माने भगवान, भूर्भुवः स्वः माने सारे के सारे, तीनों लोकों में, भूलोक में, द्योलोक में, स्वर्गलोक में, तीनों लोकों में समाया हुआ है।
भगवान सर्वव्यापी है।
और क्या है?
भगवान न्यायकारी है।
भगवान को क्या पसंद है? उसके सारे के सारे कायदे कानून एक बात पर टिके हुए हैं और उसका नाम है न्याय। खुशामद पर टिके हुए नहीं है, वरन न्याय पर टिके हुए हैं। बिजली खुशामद पर टिकी हुई नहीं है। नहीं साहब, इसकी प्रार्थना करेंगे तो पंखा चला देगी। नहीं बेटे, पंखा नहीं चलाएगी। कैसे चलाएगी?
स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब आपका पंखा चलेगा।
गलत इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको मार डालेगी। क्यों साहब, यह क्या बात है? बात यह है कि यह कहती है कि जो उचित तरीका है उससे आप हमको इस्तेमाल कीजिए।
आस्तिकता का सिद्धांत। मित्रों,
भगवान के अपने कायदे कानून हैं, उनका आप ठीक से इस्तेमाल कीजिए तो भगवान आपकी मदद करेंगे।
तब आपको भगवान की कृपा मिलेगी। अगर आप भगवान की मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो भगवान आपको मार डालेगा।
नहीं साहब,
भगवान दीनबंधु हैं, दयालु हैं। नहीं बेटे, उसका एक नाम दीनबंधु है तो एक नाम रुद्र भी है।
रुद्र किसे कहते हैं?
भयंकर को रुद्र कहते हैं।
भयंकर किसे कहते हैं?
जल्लाद को।
जल्लाद किसे कहते हैं? जल्लाद उसे कहते हैं जो मारे हंटरों के चमड़ी उघाड़ डालता है। ऐसा भी है भगवान? हाँ बेटे, ऐसा भी भगवान है।
गुरुजी, मैं तो सोच रहा था कि भगवान दयालु है।
बेटे, आपका दयालु भी समझना सही है, परंतु हमारा यह कहना भी सही है कि भगवान के बराबर मार लगाने वाला, हंटर बजाने वाला भी कोई नहीं है। मरघटों में जाइए, अस्पतालों में जाइए, पागलखाने में जाइए और देख करके आइए कि भगवान के हंटर कितने जबरदस्त होते हैं।
वह कैसे खाल चमड़ी उखाड़ देता है।
भगवान ऐसा है। हाँ भगवान ऐसा है। इसलिए अगर दो बातें आपके ध्यान में बनी रहें कि भगवान हर एक के भीतर जमा हुआ है, इसलिए हर एक के साथ में आपको सद्व्यवहार करना चाहिए। वह कहीं छिपा हुआ है और हम उससे बच सकते हैं, यह बात हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए और भगवान के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने का दुनिया में एक ही तरीका है कि भगवान की आज्ञा को अपने जीवन में धारण करें, और भगवान ने जिन बातों के लिए निषेध किया है उन बातों से बचें। यह क्या है?
यह आस्तिकता का पूरा सिद्धांत है।
इसमें कर्मफल की छवि पूरी तरीके से आ रही है।
ओम भूर्भुवः स्वः, इन शब्दों को आप समझ लें तो क्या होगा? तो आपको ब्रह्मज्ञान हो जाएगा।
यह क्या है? यह ब्रह्मविद्या है।
ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मविद्या है। नहीं गुरुजी,
उपनिषद बताइए।
बेटे, बस इतनी ही है ब्रह्मविद्या। यही उपनिषद में है कि भगवान सर्वव्यापी है।
उससे छिप करके आप कोई काम नहीं कर सकते। वह सब में समाया हुआ है, इसलिए आपको सबके साथ में शराफत और सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए और आपकी दृष्टि में यह बात बनी रहनी चाहिए कि हम उसकी मार से बच नहीं सकते।
उसके कायदे को मान लेंगे तो उसकी दया के अधिकारी बनेंगे, बेकायदे चलेंगे तो उसकी पिटाई से बच नहीं सकते।
चाहे आप 11 माला जप करें या 25 माला जप करें, चाहे आप ना करें, चाहे गालियां दें, लेकिन उसके इंसाफ से आप बच नहीं सकते।
मित्रों,
यह क्या है?
यह हमारा पूरे का पूरा आस्तिकता का सिद्धांत है।
अगर गायत्री मंत्र का यह पहला वाला पाठ आप सीख पाएं, जिसको हम ब्रह्मशीर्ष कहते हैं, तो मैं यह कहता हूं कि आपने गायत्री की ब्रह्मविद्या को जान लिया।
बस इतनी ही ब्रह्मविद्या है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, अतः आप सबके साथ समानता का व्यवहार कीजिए। छिप करके अपनी जान बचाने की कोशिश मत कीजिए। उसके आज्ञानुसार चलिए और उसकी कृपा पाइए। उसकी आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिए।
उसके दंड से बचिए। इससे आप ब्रह्म विद्या के अधिकारी बन जाते हैं और आप गायत्री माता के भक्त कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं।
भगवान के चार चरण।
चलिए इससे आगे चलिए।
इससे आगे पहला वाला चरण है तत्।
यह क्या बात है बेटे, यह मैं वही बात कह रहा था जो कि तीसरी आंख का जिक्र आता है। तीसरी आंख वह है जिसे तत् कहते हैं।
तत् माने वह।
वह से क्या मतलब है?
यह और वह दो शब्द हैं।
यह जो है प्रत्यक्ष है और वह जो है परोक्ष है।
परोक्ष माने मरणोत्तर जीवन, मौत का जीवन, बुढ़ापे का जीवन, भावी जीवन, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता। जो आपको दिखाई पड़ता है उसका नाम है यह,
और जो दिखाई नहीं पड़ता है उसका नाम है तत्।
तत् माने दूर की चीज। तत् शब्द से मतलब यह है कि आप प्रत्यक्ष समस्या को मत देखिए, दूर वाली समस्या को देखिए,
परोक्ष को भी समझिए,
मनुष्य को भी समझिए, जीवन के उद्देश्य को भी समझिए। गायत्री मंत्र के इस शब्द का यही इशारा है कि तत् वह देखिए, वह देखिए।
यह पहला वाला चरण है।
गायत्री मंत्र का अगला क्रम पंचाक्षरी के बाद तत् के बाद शुरू होता है।
इसमें फिर चार शब्द आते हैं। भगवान के चार चरण हैं, जिसमें चार वेदों का सार है। गायत्री के चार बेटे हैं जिनको हम चार वेद कहते हैं, और चार वेदों को चार शब्दों में, भगवान को चार शब्दों में सारे का सारा बता दिया गया है कि भगवान इतना ही है। भगवान के इन चार नामों में सब बातें आ जाती हैं।
कौन कौन सी? सवितु वरेण्यम दो, भर्गो तीन, देवस्य चार।
चार वेदों के चार सार हैं, यही वेदों के चार बेटे हैं।
सविता कहते हैं सूर्य को।
सूर्य से क्या मतलब है? सूर्य से दो मतलब है।
क्या? रोशनी एक, गर्मी दो।
भगवान का यह वह नाम है जो हमको रोशनी वाला बनने के लिए और गर्मी वाला बनने के लिए प्रेरणा देता है। सूरज गर्म रहता है, सूरज प्रकाश देता है, यह दो गुण उसके अंदर हैं।
सविता सूर्य को कहते हैं, और हमारे भीतर उसकी यह दो विशेषताएं होनी चाहिए। हमें गर्म रहना चाहिए। गर्म माने सक्रिय, क्रियाशील, कर्मठ होना चाहिए।
गर्मी का अर्थ यहाँ क्रियाशीलता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और सक्रियता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
हमको हर समय क्रियाशील रहना चाहिए, हमको आलसी नहीं होना चाहिए, हमको गर्म रहना चाहिए। सविता का अर्थ यह हुआ। मित्रों, सविता का एक अर्थ और होता है तेजस्वी। तेजस्वी माने प्रकाशवान। हमारा जीवन प्रकाशवान होना चाहिए, चमकपूर्ण होना चाहिए, अंधकार में जीवन नहीं होना चाहिए,
दीपक जैसा होना चाहिए, ताकि हम अपने आप भी प्रकाशवान रह सकें और हम जहां कहीं भी रहें उस सारे के सारे इलाके में प्रकाश पैदा कर सकें। रात के अंधियारे में रहें तो भी हम सूर्य के तरीके से सूर्य न बन सकें, चांद की तरह से चांदनी न बन सकें, तो कम से कम छोटे से सितारे की तरह से रहें, ऐसे सितारे की तरह से रहें जिससे हमारी जिंदगी से दूसरे लोग नसीहत ग्रहण कर सकें, और हम अपनी जिंदगी भर टिमटिमाते रहें छोटे से तारे की तरह।
और हमारे स्कूलों के छोटे बच्चे जब हमको देखें तो यही कहें, थैंक यू फॉर योर टाइनी स्पार्क अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, हाउ आई वंडर हॉट यू आर। जब छोटे छोटे से सितारे सारे अंबर पर छा जाते हैं और अंधेरे में कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, तो आपको छोटी सी चिनगारी राह दिखाएगी। मित्रों, छोटा सा दीपक हमको रास्ता दिखा सकता है।
हम छोटे हों तो क्या,
छोटी सी चिंगारी है तो क्या,
छोटे से सितारे के समान है तो क्या।
हमारा यह प्रकाश विश्व को रास्ता दिखाने के लिए काफी है।
लोग हमारे पास आकर कहें कि हमारा बाप ऐसे जिया था तो हम भी ऐसे ही जिएंगे, और हमारे भाई ऐसे जिए थे तो हम भी ऐसे ही जिंदगी जिएंगे। यह क्या है?
यह है सक्रियता, क्रियाशीलता, कर्मठता।
80 वर्ष का हो गया तो क्या हुआ?
गांधी जी 80 वर्ष के थे, जवाहरलाल नेहरू मरे थे तब वह 80 वर्ष के थे और सक्रिय थे।
बुढ़ा कहलाना आदमी के लिए शर्म की बात है और सक्रिय रहते हुए मर जाना आदमी के लिए इज्जत की बात है। बुढ़े से क्या मतलब है? बुढ़े से मतलब है जिसकी बुजा आयु के साथ बुद्धि हो गई है, शरीर कमजोर हो गया है। अब हम जो काम करेंगे दूसरे ढंग से करेंगे, और अगर शरीर जवान है तो हम शरीर के अनुसार काम करेंगे। बुढ़े हो गए तो क्या हुआ? हम दूसरे ढंग से काम करेंगे और जरूर करेंगे।
करी श्रेष्ठता का वरण। मित्रों,
जो आदमी निष्क्रिय है, मानना चाहिए कि उसने गायत्री माता के रहस्य और सविता शब्द का अर्थ समझना बंद कर दिया है।
सवितु पहला शब्द है और वरेण्यम दूसरा है। वरेण्यम किसे कहते हैं? वरेण्यम कहते हैं चुनाव को, वरण करने को।
दो में से एक को चुन लिया। इस दुनिया में सब चीजें मिली जुली हुई हैं। सत्य और असत्य मिला हुआ है, झूठ और सच मिला हुआ है, ईमानदारी और बेईमानी मिली हुई है। जहां कहीं भी आप जाएं, सब जगह घपला किया हुआ है, घपला फैला हुआ है।
दुनिया में जो वरेण्यम है श्रेष्ठ है उसको आप चुन लीजिए।
वरेण्यम शब्द दो अर्थों में आता है, एक तो आता है श्रेष्ठ के अर्थ में और दूसरा आता है चुनने के अर्थ में। आप श्रेष्ठ को चुन लीजिए क्योंकि इस समाज में सब मिले हुए हैं, इसमें हमारे जान पहचान वाले भी सम्मिलित हैं।
बुरे से बुरे आदमी मिले हुए हैं और अच्छे से अच्छे आदमी भी मिले हुए हैं,
तो क्या करें?
सभी से दोस्ती निभाएं, नहीं सबसे दोस्ती नहीं निभाएं।
इसमें जो वरेण्य है उनको हम अपना बना लेंगे और जो वरेण्य नहीं है उसको हम भगा देंगे। खाने पीन की चीजें सामने आती है तो थाली में से जो वरेण्य है उसको हम स्वीकार कर लेंगे और जो वरेण्य नहीं है उसको भगा देंगे।
मित्रों,
जीवन के प्रत्येक चरण पर जब हम कसौटी लगा कर रहेंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे जो चीज खरी है और जो खोटी है उसको फेंक देंगे। नहीं साहब,
सबको मिलाइए।
नहीं बेटे, सबको नहीं मिला सकते। जो खरी है उनको स्वीकार करेंगे और जो खोटी है उनको हटा देंगे।
खरी और खोटी की पहचान, क्या उचित है और क्या अनुचित की पहचान, ग्रहण करने और ग्रहण न करने की पहचान यदि हमारे भीतर आ जाती है तो समझना चाहिए कि हमने वरेण्यम का अर्थ समझ लिया। जो श्रेष्ठ है उसी को हम स्वीकार करेंगे और खराब को नहीं करेंगे।
अनिष्टकारक वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि यह हिम्मत हमारे भीतर पैदा हो जाती है तो समझिए कि आपने वरेण्यम का मर्म समझ लिया। इस तरह गायत्री माता का, भगवान का, ऋग्वेद का दूसरा वाला चरण वरेण्यम का रहस्य समझ लिया। अब अगला चरण आता है भर्गो का। भर्गो क्या है?
संस्कृत के हिसाब से भर्गो शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, पर मैं आपको एक छोटा सा अर्थ बता सकता हूँ। वह क्या है?
भर्गो कहते हैं भून डालने को।
भाड़ में जब चने भूनते हैं तो भर्र भर्र की आवाज होती है ना?
हाँ साहब,
होती है।
बस समझ लीजिए कि भर्गो का अर्थ यही है। अरे महाराज जी,
इसका तो संस्कृत में अर्थ नहीं हुआ बेटे। संस्कृत में अर्थ समझाना मुश्किल है, यह समझाने में मुझे बहुत देर लग जाएगी,
इसलिए भर्गो का संस्कृत अर्थ मत समझिए। बस इतना जान लीजिए कि भर्ग का अर्थ है भून डालना।
यह क्या बात हुई
बेटे, जीवन का एक पहलू यह भी है।
यह क्या है? यह वह पहलू है कि सारे के सारे जीवन में जहाँ सद्वांछनीयता एक ओर है वहाँ अवांछनीयता दूसरी ओर है। हमारे ऊपर अवांछनीयता का भी हमला होता है।
सदाशयता का हमको पालन करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, वहीं दुराचरण को उखाड़ फेंकना चाहिए।
सबसे साथ में हम प्यार नहीं कर सकते।
अगर सबके साथ प्यार करेंगे तो डॉक्टर जैसा प्यार करेंगे। सत का संवर्धन एवं असत का निराकरण।
डॉक्टर मरीज को प्यार करता है, प्रेम करता है। कैसे प्यार करता है?
भाई साहब,
हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो कल क्या करेंगे? कल हम आपका मेजर ऑपरेशन करेंगे।
क्या ऑपरेशन करेंगे?
आपके पेट को फाड़ेंगे और देखेंगे कि इसमें जो गोला है उसे कैसे बाहर निकालें।
डॉक्टर साहब,
यह आप क्या करते हैं?
देखिए आप सवाल लेकर आ गए। हाँ भाई साहब,
हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हम आपकी बीबी बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं, आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं, इसलिए आपका ऑपरेशन करेंगे।
मित्रों,
इस दुनिया में जो दो बातें हैं उनमें से एक का संवर्धन करना चाहिए और एक का समापन करना चाहिए,
उससे संघर्ष करना चाहिए।
भगवान के जब अवतार होते हैं तो दो उद्देश्यों को लेकर के होते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। वे अच्छों का संवर्धन करते हैं और बुरों को लातों से मारते हैं।
नहीं साहब, बुरों का भी संवर्धन कीजिए, पालन पोषण कीजिए और अच्छों का भी कीजिए।
नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। बुरों का पालन नहीं हो सकता, बुरों से लोहा ही लेना पड़ेगा,
उनसे लड़ना ही पड़ेगा। अब बताइए, शास्त्र भी कहता है कि आगे आगे वेद ज्ञान शराफत और पीछे पीछे जूता। नहीं, सबके साथ में शराफत दिखाए, मित्रता दिखाए।
नहीं बेटे, जानवर के साथ में मित्रता नहीं दिखा सकते।
जानवर को वेद नहीं सिखा सकते।
जानवर जानवर होता है। जानवर को रास्ते पर लाने के लिए एक ही रास्ता है और उसका नाम है जूता। और कोई शिक्षा मानता है वह? नहीं, और कोई चीज उसकी समझ में नहीं आती।
फिर क्या करना पड़ेगा? मित्रों,
आध्यात्मिकता में दोनों ही नीतियों का पूरा पूरा समन्वय है।
यह नहीं कि सबके साथ सहायता कीजिए, सबको दान दीजिए,
ऐसा नहीं हो सकता। दुराचारी और अनाचारी के लिए क्या अस्त्र है?
एक आंख सुधार की और एक आंख प्यार की।
अगर आप यह नहीं रखेंगे तो आपके बच्चों का सत्यानाश हो जाएगा। नहीं साहब, हम सब बच्चों से प्यार करेंगे। नहीं, सब बच्चों से प्यार नहीं हो सकता। अगर आपने सुधार की आंख नहीं रखी तो आपके बच्चे आपकी शान पर दाग लगाकर जाएंगे और उन बच्चों का सत्यानाश हो जाएगा। नहीं साहब, हम सबको प्यार करते हैं और हमेशा प्यार ही जानते हैं। नहीं बेटे, तुझे प्यार करना नहीं आता, तू प्यार भी कर, दुलार भी कर और टेढ़ी आंख भी रख।
दबाव भी डालना सीख।
नहीं साहब,
दबाव नहीं डालूंगा और मैं तो सहायता ही करूंगा।
तो बेटे, फिर तू मरेगा, फिर हमसे क्यों कहता है कि बच्चा बिगड़ रहा है?
बेटे, यह दूसरा वेद है, इसको हम अथर्ववेद कहते हैं।
मित्रों, अभी हमने आपको ऋग्वेद बताया, यजुर्वेद बताया और यह अथर्ववेद बता चुके हैं। चौथा है सामवेद, जिसका नाम है देवस्य। देवस्य आपको दिव्य बनाता है, देवत्व से संपन्न बनाता है,
दैवी संपदाओं से संपन्न बनाता है। गीता में दिव्य विभूतियों एवं दैवी संपदाओं का वर्णन किया गया है। आपकी भक्ति और देवत्व के गुण में वह सब कुछ है जो आप हर एक को दे सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है तो न सही, हम प्यार देंगे,
सलाह देंगे, सहयोग देंगे, प्रोत्साहन देंगे।
हमारे पास में हजारों चीजें हैं, हमारे पास वाणी है, वाणी भी क्या नहीं कर सकती है।
यह पैसे से भी ज्यादा लाभदायक होती है।
ऋषियों के पास वाणी थी, ज्ञान भी हो सकता है, तप भी हो सकता है, सहयोग भी हो सकता है,
प्रोत्साहन भी हो सकता है, मार्गदर्शन भी हो सकता है।
पैसा ही एकमात्र चीज नहीं है, यह देवत्व के लिए आवश्यक नहीं है कि आप संपन्न आदमी हो। बिना संपन्नता के भी अपने स्वेद की पसीने की बूंदें भी सेवा कार्य के लिए दे सकते हैं। आपकी पसीने की बूंदें भी हीरे मोती के बराबर हो सकती हैं। पैसा नहीं है तो न सही, दान के लिए पैसा नहीं है तो न सही, गरीब व्यक्ति भी दानी हो सकता है।
इसलिए मित्रों, मनुष्य को देवस्य दिव्य देने वाला होना चाहिए।
चार वेदों की शिक्षा में हम सामवेदी बने। चारों के चारों वेद भगवान के नाम हैं। इनसे हम सीख ले कि गायत्री माता क्या कहना चाहती हैं।
गायत्री माता का क्या शिक्षण है, गायत्री माता क्या चाहती हैं?
गायत्री का हंस कैसा होना चाहिए,
ये चारों सिद्धांत मिले हुए हैं।
गायत्री माता में और क्या रह गया बेटे? थोड़े से शब्द और रह गए हैं, इसमें क्या रह गया है?
तत्स्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, में एक शब्द धीमहि माने धारण करने को कहते हैं।
अभी जो आपसे कहा गया है वह कहने और सुनने के लिए नहीं कहा गया है। कहने और सुनने की जरूरत तो वहां होती है जहां भागवत कथा कही और सुनी जाती है। क्या हो रहा है?
अरे साहब,
भागवत कही जा रही है, पंडित जी कह रहे हैं और चेला जी सुन रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि क्यों साहब?
यही तो अर्थ होता है न इस कथा का। हाँ साहब, यही है।
उन्होंने कह दी और हमने सुन ली।
बस जीभ ने कही और कान ने सुन ली।
सत्यनारायण की कथा जीभ से कही और कान से सुनी,
बस हो गया सत्संग।
नहीं बेटे, ऐसे नहीं हो सकता। ब्रह्म को हृदय में उतारें।
महाराज जी,
फिर कैसे हो सकता है? बेटे, आध्यात्मिकता का लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसको हम भीतर धारण करें, हृदयगम करें। हृदयगम करने से क्या मतलब है? हृदयगम करने का जो अर्थ होता है वह है कि ब्रह्म को चर जाओ।
चर जाओ? हाँ बेटे, जो ब्रह्म को चर जाता है उस आदमी का नाम होता है ब्रह्मचारी।
चरने से क्या मतलब है? चरने से मतलब है जैसे गाय होती है, बकरी होती है और घास को चर जाती है,
इसी तरह ब्रह्म को चर जाओ। महाराज जी,
आपकी यह कैसी बात रही?
बेटे ऐसे रही कि ब्रह्म को खा लो, खा करके हजम कर लो,
जुगाली कर लो और जुगाली करके इसे अपने रक्त का और दूध का अंग बना लो। बकरी घास चरती है, उसे हजम करती है और हजम करके अपने शरीर में घास को समाविष्ट कर लेती है, फिर दूध बना देती है।
इसी प्रकार से आपको भी ब्रह्म को चरना होगा।
आप उसे हृदय में धारण करें, बक बक मत करें।
बके मत, सारे दिन रामायण पाठ, गीता पाठ, भागवत पाठ, सत्संग पाठ, ये पाठ वो पाठ करेंगे।
नहीं बेटे, यह सब बंद करें। जो कुछ करना है उसे धारण करें, ध्यान करें, हृदयगम करें,
व्यवहार में उतारें।
नहीं साहब, व्यवहार से तो मैं हजारों मील दूर हूँ, व्यवहार में इसे नहीं ला सकते।
व्यवहार जैसा था वैसा ही रहेगा। सुन सकता हूँ?
सुनने से क्या मिलेगा? धारण करें। धारण करने से मतलब है हृदयगम करें, व्यवहार में उतारें। अध्यात्म के जितने भी सिद्धांत हैं बेटे, ये जीवन में उतारने के लिए हैं, सुनने और सुनाने के लिए नहीं है। ना जाने लोगों की समझ में यह वाहियात बात कैसे आ गई कि इसको कहा जाए, सुना जाए, भागवत को कहा जाए और सुना जाए, लेकिन इस कहने सुनने से क्या मिलेगा?
बेटे कहने सुनने से कोई बैकुंठ को नहीं जाता,
इसे जीवन में उतारना पड़ता है। बकबक कहना सुनना, बस यही याद रहा और कुछ नहीं, यह अध्यात्म नहीं है। तो क्या है बेटे? आपसे मैं यह निवेदन कर रहा था कि गायत्री मंत्र का उद्देश्य, गायत्री मंत्र का शिक्षण यही है कि चारों धाराएं जो अब तक हमने निवेदित की हैं, वे हमारे हृदय में होनी चाहिए और हमारे जीवन के महत अंग बनने चाहिए।
इसके बाद इसमें दो शब्द रह जाते हैं, धियो यो न प्रचोदयात, इसमें न शब्द के माने हैं हम सब।
जो भी आप विचार करें, हम सबके लिए विचार करें।
व्यक्तिवाद नहीं, समूहवाद, संघवाद का विचार करें।
मेरे लिए, मेरा पैसा, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी मिट्टी, मेरा स्वर्ग, यह मेरा कहना बंद करें। फिर क्या कहें?
हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा यश, हमारा वर्चस्व, इस तरह व्यक्तिवाद नहीं, समूहवाद को लेकर चलें। मिलजुल कर रहना, साथ साथ रहना, मिल बांट कर खाना, सबके सुख में अपने को सुखी अनुभव करना, यही न की प्रेरणा और शिक्षा है।
आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो कामनाएं हैं, आपके प्रयत्न और आपकी चेष्टाएं सभी हम सबके लिए होनी चाहिए।
गायत्री की शिक्षा समूहवाद की शिक्षा है।
माँ से करे सद्बुद्धि की प्रार्थना।
मित्रों,
गायत्री में और क्या है?
धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें बस एक ही प्रार्थना की गई है।
क्या प्रार्थना की गई है?
हे भगवान, आप हमारी अकल को ठिकाने पर रखें।
यह अकल बड़ी बदमाश है। अकल ने हमारे साथ में जितनी गद्दारी की है, अकल ने जितना हमको तंग किया है, हैरान किया है कि इस अकल से ज्यादा हमारा दुश्मन और कोई नहीं है। अकल ने पैसा भी दिया है, अकल से ही हमने जाने क्या क्या किया है, अकल से जाने हमने क्या क्या कमा लिया है। अकल ने जहाँ हमारे भौतिक जीवन में बहुत सी सुविधाएं दी हैं, वहीं इसने हमारे जीवन में अदपिन का रास्ता भी खोला है।
हाय रे अकल, हे भगवान,
यह हमारे काबू में नहीं आती। और सब काबू में आ जाता है, पड़ोसी काबू में आ जाता है, मोहल्ले वाले काबू में आ जाते हैं, पर एक ही चीज है जो काबू में नहीं आती, और यह है हमारी अकल।
हे भगवान, आप एक काम कर दीजिए कि धियो यो नः प्रचोदयात, यह हमारी जो अकल है उसमें ऐसे डंडे मारिए, उसकी ऐसी पिटाई कीजिए और उसे उल्टे टांग घसीटते हुए सुअर की तरीके से ले जाइए।
यह मानती ही नहीं है, और सब मानते हैं, पर यह है कि हमारा कहना मानती ही नहीं। हमारी अकल इतनी तंग करती है, इतना जलील करती है और हमको गड्ढे में धकेले जा रही है।
मित्रों,
गायत्री मंत्र में भगवान से एक ही प्रार्थना की गई है कि आप हमारी अकल को ठीक कर दें, तो बाकी समस्याएं हम अपने आप हल कर लेंगे। बाकी के लिए हम आपसे खुशामद नहीं करेंगे, आपसे हम मिन्नतें नहीं करेंगे, आपसे हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके आगे हम पल्ला नहीं फैलाएंगे। आपने हमें इतनी बड़ी अकल दी है ताकि हम अपनी भौतिक समस्याओं को अपने तरीके से पूरी तरह हल करने में समर्थ हो सकें, लेकिन हमसे एक काम नहीं हो पाता, और वह है कि हमसे अपनी अकल काबू में नहीं हो पाती। वह हमें बहुत हैरान करती है। अगर आप भगवान हैं और दया कर सकते हो तो हमारी अकल को ठीक कर दीजिए, बस बाकी हम कर लेंगे। यह क्या है?
बेटे रवींद्रनाथ टैगोर ने इसी धियो यो नः प्रचोदयात के लिए बंगला भाषा में बहुत सुंदर कविता की है।
वह मुझे बहुत प्यारी है।
इसका सारे का सारा सारांश यही है कि हे भगवान,
आप हमें कभी सुख न दें।
क्यों?
क्योंकि सुखों के मिलने से हमारे अंदर जो सामर्थ्य उत्पन्न होनी चाहिए वह कुंठित हो जाएगी और हम निकम्मे हो जाएंगे
और हम ठप हो जाएंगे।
इसीलिए यदि आप सुख दिया करते हैं तो वह हमको न दें और किसी को दे दें।
रवींद्रनाथ टैगोर की कविता का दूसरा वाला भाग है, हे भगवान,
भविष्य में आप दूसरों को दुखी किया करते हैं, अगर यह बात सही है तो आप कृपा करके हमारे दुखों को न देखें,
क्योंकि हमारा साहस, हमारा शौर्य, हमारा पुरुषार्थ और हमारा पराक्रम बिना दुखों के दुखों की चट्टान पर पिसेगा।
संसार में जितने भी महामानव हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, सबको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है और कठिनाइयों के साथ लड़ना पड़ा है। इसके बिना न कोई आदमी भौतिक जीवन में और न कोई आध्यात्मिक जीवन में विकसित हो सका है।
सुख में समृद्धि नहीं हो सकती,
सुखों में कोई पराक्रमी नहीं हो सकता, पुरुषार्थी नहीं हो सकता, साहसी नहीं बन सकता।
इसलिए हे भगवान, आप इन दुखों को हमारे साथ लगे रहने देना। रवींद्रनाथ टैगोर की कविता का यह छंद नंबर 2 है।
और उनका अगला छंद है, सुखों का साथ हमें मत देना, अगर आप दिया करते हो तो आप हमारे दुखों को मिटाना मत, अगर आप मिटाया करते हो तो। रवींद्रनाथ टैगोर की कविता की अंतिम पंक्ति में कहा गया है, अगर आप वास्तव में ही दिया करते हैं, क्योंकि आप दानी हैं, दयालु हैं,
बिना दिए आपसे रहा ही नहीं जाता,
अतः अगर आप दिया ही करते हैं तो आप हमको एक चीज देना। क्या देना? जब हम पाप की ओर बढ़ें तो अपने लंबे वाले हाथ हमारी तरफ बढ़ाना और हमको उस पाप पंख में गिरने से खींच लेना। जब पाप के पंख में हम गिरें तो हमारे हाथ पकड़ना और घसीट करके किनारे पर फेंक देना। यह क्या है? बस एक ही प्रार्थना है कि अगर आप देते हो तो।
इस तरह धियो यो नः प्रचोदयात का अर्थ हो गया
यही कि आप हमारी कतई रक्षा न करना, आप हमें अपने बलबूते पर चलने देना,
अपने पुरुषार्थ से हमको संभलने देना,
अपने जीवन की समस्याओं को सुझाने के लिए आप इन बातों में दखल मत देना। यह हमारा और हमारी दुनिया का मामला है। आपका मामला एक ही है कि आप हमारी अक्ल को ठीक कर दें।
मित्रों, ये है गायत्री मंत्र और उसका प्रशिक्षण।
अगर हम इसको जान पाएं, तो हम निहाल हो जाएं। गायत्री मंत्र की यह शिक्षा हमारे जीवन में आ जाए तो गायत्री के भक्तों को जैसा होना चाहिए हम भी वैसा ही बन जाएंगे। और अगर हम यह प्रेरणा और यह शिक्षा देने में समर्थ हो सके तो हम व्यक्ति के उत्थान में और समाज के उत्थान में दोनों उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। दुनिया में सुख ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं और मनुष्य में देवत्व का उदय कर सकते हैं और इसी जमीन के ऊपर स्वर्ग का अवतरण करने में समर्थ हो सकते हैं। इस तरह गायत्री महामंत्र एक ऐसी कामधेनु है जिसकी महिमा ऐसी है जिससे व्यक्ति और समाज की समस्त भावनाएं एवं संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप इसका स्वरूप समझें, इसकी इच्छाओं को समझें, इसकी प्रेरणाओं को समझें और इसकी दिशाओं को समझें।
समझने के पश्चात उसको हृदयंगम करें और उसको फैलाने का प्रयत्न करें तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा और गायत्री संस्था की स्थापना, गायत्री का विस्तार करने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा।
इन विचारणाओं को, इन भावनाओं को समूचे संसार में फैलाने में और अपने अंदर धारण करने में आप समर्थ हो सके तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।